ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं कम्मठजनियवेयण उवहि समुत्तिर्णये जिणेन मिहुं वेयण महाहियारम् विविह हियारम् परुवेमो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धवला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। ये जो दसवीं पुस्तक है उसमें चतुर्थ वेदना खंड में वेदना अनुयोग द्वार की बात अपनी चल रही है और हम यहाँ पृष्ठ संख्या 97 पर आ गए। 97 अब यहाँ हम देखते हैं, ये अल्प बहुत्व की बात चल रही थी, जीव यव मध्य रचना की बात चल रही थी ना, उसमें अल्प बहुत्व का प्रकरण चल रहा है। हमने प्ररूपणा, प्रमाण, श्रेणी, अवहार आदि बातें देखी थी। अब यहाँ क्रम से ये अल्प बहुत्व चल रहा है, उसमें हमने नीचे की अधस्तन का अल्प बहुत्व देखा था, उपरिम अल्प बहुत्व देखा था आगे वाला, और अभी दोनों ओर का मिलकर एक साथ अल्प बहुत्व देख रहे हैं। इसे फिर दोबारा पढ़ते यहाँ पहले से 97 पृष्ठ पर। अब यव मध्य से अधस्तन और उपरिम योग स्थानों के अल्प भूत्व कहते हैं, नीचे जघन्य योग स्थान से लेकर बीच वाला और फिर ऊपर उत्कृष्ट योग स्थान तक। पहले नंबर पर कहते उत्कृष्ट योग स्थान के जीव सबसे स्तोक है, स्तोक यानी अल्प है। दूसरे पॉइंट पर उनसे जघन्य योग स्थान के जीव असंख्यात गुणे हैं। तो असंख्यात गुणे, तो असंख्यात का क्या प्रमाण है, गुणकार क्या है? तो कहते जघन्य योग स्थान सदृश उपरिम जीवों की, उपरिम सब गुणहानि शलाकाओं की, कुछ कम अन्योन्य अभ्यस्य राशि गुणकार है, जो कि पल्लोपम के असंख्यात विभाग प्रमाण है। हमने इसका अर्थ कल देखा था, जैसे नीचे जघन्य स्थान में हमने मान लिया था 16 है, वैसे ऊपर की ओर भी 16 संख्या वाला कोई योग स्थान है, तो 5 संख्या वाले योग स्थान से लेकर 16 संख्या के योग स्थान तक के जितनी गुणहानि है, वो गुणहानि शलाका जो है उसकी अन्योन्य अभ्यस्त राशि निकालना और उससे उस संख्या को गुणा करना, उसकी संदृष्टि उन्होंने बता दी थी कि 16/5। ये दूसरा पॉइंट हुआ। देखो ऊपर वाले 5-16, एक्चुअली जघन्य योग स्थान कहो या ऊपर वाले भी कोई जघन्य योग स्थान जितना स्थान को एक ही बात है, तो वो कितने गुना है, 5 से 16 कितने गुना है, तो डायरेक्ट बता दिया 16 को 5 से डिवाइड करें तो इतने गुना है, तो वो कैसे निकालना? तो 5 वाला जो योग स्थान है और 16 वाला जो योग स्थान है तो उसके बीच में कितनी गुणहानि शलाका जाती है, अभी यहाँ तो कुछ ऐसी जाती नहीं है, डेढ़ या ऐसी कुछ बन जाएगी, तो उस गुणहानि शलाका के द्वारा अन्योन्य अभ्यस्त राशि निकालना, यानी जितनी गुणहानि है उतनी बार 2 संख्या लिखकर आपस में गुना करना, तो ये अन्योन्य अभ्यस्त राशि आ जाएगी, उससे वो संख्या को 5 को गुणा करना, एक्चुअल में वो वैसा निकालना। अभी यहाँ समझाने के लिए 16/5 लिख दिया उन्होंने। अब ये जो 16/5 है, इससे उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों को गुणित करने पर जघन्य योग स्थान के जीवों का प्रमाण होता है। 16/5 इसको गुणा करना 5 से तो 16 आती है संख्या। अब तीसरे पॉइंट पर हमने देखा था इनसे यवमध्य के जीव असंख्यात गुणे हैं। 16 से यवमध्य के 128 जो हमने मान लिए है वो असंख्यात गुणे हैं, तो उसका गुणकार क्या है? तो जघन्य योग स्थान के सदृश जीवों के नीचे की, ये जीवों की नीचे की नहीं है, जीवों के नीचे की। जैसे अभी हमने देखा ना जघन्य योग स्थान में 16 है, ऊपर की ओर भी 16 वाली संख्या है, तो इसलिए वहां सदृश संख्या लिखा। जघन्य योग स्थान के सदृश जीवों के नीचे की, यानी उस विशिष्ट योग स्थान से नीचे, और यव मध्य के जीवों के ऊपर की, ये जीवों की ऊपर की नहीं, जीवों के ऊपर की। अभी हमें पता चला ना कितने गुना निकालना है, तो क्या करना, उसके बीच में जितने गुणहानि शलाकाएं होगी उससे गुणित करना, सब गुणहानि शलाकाओं की अन्योन्य अभ्यस्त राशि गुणकार है जितने। हाँ 16 और 128 के बीच में कितनी गुणहानि है, तो 3 गुणहानि है, तो 3 गुणहानि के अन्योन्य अभ्यस्त राशि निकालना, 3 बार 2 2 करके गुणा करना, तो 8 आते हैं, तो 16 को 8 से गुणा करेंगे तो 128 आती है। एक्चुअल में वो कितना है, तो पल्लोपम के असंख्या पे भाग प्रमाण है, उसकी संदृष्टि 8 है। इससे जघन्य योग स्थान के जीवों को गुणित करने पर यवमध्य के जीव होते हैं, यानी 16 को 8 से गुणा करने पर 128 आते हैं। यहां तक तो हमने कल पढ़ा था, अब इसके आगे चौथा पॉइंट बता रहे हैं। इनसे यवमध्य से नीचे के और जघन्य योग से आगे के जीव असंख्यात गुणे हैं। जघन्य योग से यानी जघन्य योग स्थान के जितने जीव है उससे, यानी जो 16 हमने मान लिया था कल, हमने देखा था ना नीचे की ओर हम 16 देख लिखेंगे, ऊपर 108, ये नीचे 16, यहाँ 108, और ऊपर करते करते हमने 5 तक देखे थे। इस तरह से है ना ये योग व्यव मध्य रचना, ये जीव व्यव मध्य रचना। तो अब कहते हैं ये 16 से 128 कितने गुना है वो तो बता दिया, अब कहते इससे ये बीच वाले जो है सारे, इनकी टोटल 600 थी, ये कितने गुना है बीच वाले, देखो इनसे, फिर पढ़ती हूँ, यव मध्य से नीचे के और जघन्य योग से आगे के जीव असंख्यात गुणे हैं, तो उसका गुणकार क्या है? कहते कुछ कम डेढ़ गुणहानिया गुणकार है, जो कि जगत श्रेणी के असंख्यात भाग मात्र है, उसकी संदृष्टि उन्होंने बता दी 75/16। अब इस संख्या से यवमध्य को गुणित करने पर विवक्षित द्रव्य का प्रमाण होता है, यानी 75/16 गुना 128 वो 600 आती है। ये बीच वाले योग स्थानों के जीवों की टोटल है, 16 और 128 को छोड़कर बीच में कितने स्थान है ना, 16 के बाद 20 है, 24 है, 28 है, ये सब की टोटल करने 112 तक, तो ये 600 आती है। अब पांचवे पॉइंट पर इनसे यवमध्य से नीचे के जीव विशेष अधिक है, कितने हो गए, ये 16 भी उसमें मिला देना तो 616 हो जाएगी, तो कितने से अधिक है, तो जघन्य योग स्थान के जीवन से वो अधिक है। कितने अधिक है, जघन्य योग स्थान के जीवों का जितना प्रमाण है उतने अधिक है, यानी 600 में 16 मिला दे 616 हो गए, अधिक करके 616 हो गए। ये तो पांच पॉइंट हुए, अभी छठा पॉइंट, इनसे यवमध्य से आगे के और उत्कृष्ट योग से नीचे के जो विशेष अधिक है, अभी ऊपर की ओर बता रहे हैं 128 के ऊपर और 5 के नीचे, इन बिटवीन जो संख्या है उसकी टोटल बता रहे हैं वो कितने हैं, तो कितने हैं, कितने अधिक है, तो कहते हैं जघन्य और उत्कृष्ट योग स्थान के जीवन से रहित अंत की दो गुणहानियों के द्रव्य का जितना प्रमाण है उतने अधिक है। हमको किससे कंपेयर करना है, देखिए पहले हमने कितना लिया था, 616 लिया था, तो 616 इस बाजू भी होता है 16 तक, क्योंकि 16 वाली फिगर ऊपर की ओर भी है। जघन्य योग स्थान के जितने जीव है उतनी संख्या ऊपर की ओर भी है। तो अभी कितने अधिक हैं? तो अभी 16 के बाद यहाँ दो गुणहानि रहेगी, अंतिम दो गुणहानि। उसका जितना द्रव्य है उतने अधिक है, तो उसको समझा रहे देखिए। तो जघन्य और उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों से रहित अंत की दो गुणे, यानी 16 को भी छोड़ना और 5 को भी छोड़ना, क्योंकि 16 को तो हमने 616 में इंक्लूड कर दिया है। और उन्होंने पूछा था कि 128 और 5 के बिटवीन कितने जीव हैं, तो यहां से ये 616 तो हमने काउंट किए थे, अब ऊपर कितने रह गए, तो 16 के बाद वाली जो फिगर है 14 है 12 है 10 है उसको ले लेना, और 5 के पहले ने 6 तक लेना उसकी संख्या, तो उसको काउंट किया उन्होंने। अंत की दो गुणहानियों के द्रव्य का जितना प्रमाण है उतने अधिक है, तो उन्होंने कहा 78-21 इज इक्वल टू 673। ये कैसे निकालना 78 और ये सब काहे से कैसे निकालना? तो हमने जो 76 पृष्ठ पर गुणहानि का चार्ट देखा था उसमें हमने अंत की दो गुणहानि इस तरह से देखी थी, 16, 14, 12 और 10 ये अंत से दूसरी गुणहानि, और अंतिम गुणहानि कैसी थी, 8, 7, 6 और 5। अब इनके टोटल करेंगे हम, ये होगी 52, 52 और ये होती है 26, इनकी टोटल कितनी हुई 78। 78 में से हमको 16 और 5 इनको नहीं लेना है, तो 21 माइनस के उसमें से 78 में से 21 गए तो 57 आ गए। तो 616 में ये हम पृष्ठ संख्या 98 पर देख रहे हैं, 616 में इसको मिला देंगे तो 673 संख्या आती है। ये ख्याल में है ना कैसे क्यों किया, 78 कहां से निकाला, क्योंकि हमें 16 से आगे और 5 के नीचे के कितने जीव है उतने से अधिक है इतना निकालना है। 616 तक तो हमने कल भी निकाल के देखा था कैसे है। मंजू बहन मिला, देखो ये योगस्थान के जीवों की संख्या अल्पभूतव चल रहे है, कल आप थी ना, कल नहीं थे, अच्छा। ये जगन योगस्थान 16 है, बीच में 128 है, एकदम उत्कृष्ट है, वो 5 जीव है वहां पर। तो कहां से कितने से कौन सा किससे बड़ी संख्या है उसको कंपेयर कर रहे हैं। अभी हम 98 पृष्ठ पर आ गए हैं, दूसरे लाइन में अंत में इनसे जहां लिखा है ना, ये 7वां पॉइंट है अल्पबहुत्व का। इनसे यवमध्य से आगे के जीव विशेष अधिक है। अब मुझे बताओ, हमने तो यहां से लेके 128 के आगे से लेकर 5 छोड़कर सब जीव देखे थे, अब आगे कितने अधिक है, तो 5 अधिक है, तो उत्कृष्ट योग स्थान के जीव से वो संख्या अधिक है। कितने अधिक है? उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों का जितना प्रमाण है उतने अधिक है। 673 में 5 मिलाए तो 678 हो जाते हैं। अब आगे का पॉइंट 8वें नंबर का, इनसे अनुत्कृष्ट जीव विशेष अधिक है। कितने अधिक है? अनुत्कृष्ट किसको कहना, जो उत्कृष्ट नहीं है वो अनुत्कृष्ट। तो अनुत्कृष्ट जीव में ये 5 को घटाना और 128 को मिलाना, ये उत्कृष्ट योग स्थान है। ये यहाँ तक 128 तक मिले ना, क्योंकि नीचे के जो है वो सिमिलर है, यहाँ पर नीचे के जो अधस्तन गुणहानियों के जो योगस्थान की संख्या है वो तो यहाँ ऊपर की ओर भी है, क्योंकि ऊपर की ओर तो 5 गुणहानियां, नीचे की ओर 3 गुणहानियां, नीचे की ओर के जितने योगस्थान है उसी से सिमिलर ऊपर की ओर भी है, 16 तक तो उतने ही है, और फिर ऊपर हमने देखे थे 16 से ऊपर 2 गुणहानियां थी। अब कहते हैं कि ये अभी संख्या तो वही है ना, अभी उसको रिपीट नहीं करना, तो अभी अनुत्कृष्ट का अर्थ है 5 के नीचे और 128 तक सभी टोटल हमको लेनी पड़ेगी। तो अभी तो हमने जो ऊपर की ओर सब मिलाए देखे थे पांच सहित वाले 678 देखे थे, अब पांच को तो घटाना और 128 को मिलाना। देखो इससे अनुत्कृष्ट जीव विशेष अधिक है, कितने अधिक है? उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों से रहित यवमध्य के जीवों का जितना प्रमाण है उतने अधिक है। 678 तो हमने निकाले थे, उससे कितना मिलाना उसमें? तो 128 तो मिलाना और 5 को घटाना, यानी 123 उसमें मिलेंगे। तो संख्या थे 801। सभी की टोटल की, परंतु जीवों का प्रमाण नीचे की ओर वही है, नीचे भी 600 हमने 16 देखे थे और ये 616 तो इसमें भी हमने इंक्लूड किए हैं, ये ऊपर और नीचे समान है, अभी उसको दोबारा नहीं लेना है। अनुत्कृष्ट कहा ना, अनुत्कृष्ट का अर्थ क्या हुआ?
उत्कृष्ट नहीं है ऐसे जीव, उत्कृष्ट जीव जिसका योग नहीं है, हाँ,
ये जगन्य योग स्थान यहाँ पर आ गया ना। जगन्य योग स्थान कितना है? वो 16 वाला, वो तो वहां पर भी है, दोनों ओर टेपरिंग देखे थे हमने, हाँ। यानी वो जीवों की संख्या की अल्पभूतों की बात चल रही है ना। हमने देखा था जगन्य योग स्थान के सदृश योग स्थान, जहाँ जीवों की संख्या कितनी उसकी बात चल रही है, योग कितना है उसकी बात नहीं चल रही है। उस विशिष्ट योग स्थान में जीव कितने हैं उसकी चल रही है, यहाँ योग स्थान तो कह दिया परंतु वहां जीवों की संख्या का अल्पभूत चल रहा है, ख्याल है ना। हाँ, यह है तो ऊपर की ओर, यानी उत्कृष्ट योग स्थान है, परंतु वहां संख्या उतनी है जितने नीचे जगन्य स्थान में थी, इसलिए जगन्य योग स्थान के सदृश ऐसा उन्होंने पहले बताया था। तो ये 801 तक आए हम। देखो अब आगे 9 नंबर, इनसे यवमध्य से लेकर आगे के सब योग स्थानों के जीव विशेष अधिक है, कितने अधिक है? अभी 5 को तो हमने घटाया था उत्कृष्ट वाले, अब उसी को मिलाना 5 को। तो उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों का जितना प्रमाण है उतने अधिक है, 801 में 5 मिला दिए थे, 806 हो गए। अब 10वें पॉइंट पर, सब योग स्थान के जीव विशेष अधिक है, अब नीचे वाले मिलाना। अब क्योंकि उन्होंने पर्टिकुलरली लिखा है कि सब योग स्थानों के जीव कितने हैं, विशेष अधिक है लिखा ना, कितने अधिक है? यवमध्य के नीचे के जीवों का जितना प्रमाण है उतने अधिक है। 806 जो हमने देखे थे, 128 से लेकर 5 तक, अब उसमें नीचे के जो 616 है वो भी मिला देना, तो टोटल 1422 आती है, जो हमने पहले मान लिया थे इतने जीव। इसलिए यवमध्य से नीचे के स्थान से आगे का स्थान विशेष अधिक है। हम यही बोलना था ना, नीचे के नीचे से ऊपर का विशेष अधिक है, ये सिद्ध हुआ। ऊपर के सब स्थान मिलकर 806 हो गए, इंक्लूडिंग 128। 128 को निकालेंगे तो भी ऊपर के स्थान ज्यादा है और नीचे के कम है, नीचे 3 गुनहानी है और ऊपर 5 गुनहानी है। तो ये अभी ये क्या प्रूव करते हैं? इसलिए जीव यव मध्य से नीचे के स्थान से आगे का स्थान, आगे का नहीं आगे के स्थान चाहिए, विशेष अधिक है, अनेक स्थान है ना वहां पर। यह सिद्ध हुआ, अतएव यहां चूंकि अंतर्मुहूर्त काल रहना संभव नहीं है, ये सारा कहने के बाद अब क्या कह रहे हैं कि यहाँ अंतर्मुहूर्त काल तक रहना संभव नहीं है। उत्कृष्ट योग स्थान में कोई जीव अंतर्मुहूर्त तक नहीं रह सकता है, वो कितना रहता है उसकी बात करेंगे अभी। इसीलिए काल यवमध्य के ऊपर अंतर्मुहूर्त काल तक रहा ऐसा ग्रहण करना चाहिए। दो प्रकार है ना यवमध्य, एक तो काल यवमध्य है और एक योग यवमध्य है। ऐसा योग स्थान जिसमें लगातार 8 समय तक रह सके, उस योग स्थान को यवमध्य वाला कहा था, काल की अपेक्षा अधिक काल की। और दोनों ओर हमने देखे थे कोई सात समय वाले कोई छह समय तक लगातार रहे ऐसे ऐसे स्थान, तो ऐसे स्थानों में वो अंतर्मूर्त रहा ऐसी बात आती है। अब इसी का विशेषार्थ कहते हैं, यहाँ यवमध्य से जीव यवमध्य का ग्रहण होता है या काल यवमध्य का, इसी प्रश्न का निर्णय कर यह बतलाया गया है कि प्रकृत में यवमध्य पद से काल यवमध्य का ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जीव यवमध्य के उपरिम भाग में अंतर्मूर्त काल तक रहना संभव नहीं है। ये 28 नंबर का जो सूत्र हमने देखा था वहां से ये बात चली आ रही थी, ये पेज नंबर 57 पर था सूत्र 28, 57 पृष्ठ से ये बात हमने देखी थी। देखो वहां क्या लिखा था, फिर से दोबारा वो सूत्र देखते हैं 57 पृष्ठ पर 57। इस प्रकार परिभ्रमण करके जीवन के थोड़ा शेष रहने पर, याद है कौन से जीवन की बात चल रही थी, 2000 सागर के अंत की ओर, सातवें नरक में 33 सागर वाला वो जीव था, और अंत की ओर अभी क्या कहते हैं, जीवन के थोड़ा शेष रहने पर, वो 33 सागर की आयु अभी समाप्त होने को आई है, वो थोड़ी बची है, उस वक्त क्या करें, योग यव मध्य के ऊपर अंतर्मुहूर्त काल तक स्थित रहा, ये वहां की बात है। तो ये कौन सा योग यव मध्य लेना, काल योग यव मध्य के जीव योग यव मध्य, उसकी बात उन्होंने बहुत विस्तार से समझा है।
ये 2000 सागर लिखा है तो ये पेज नंबर 4 में ब्रैकेट में सिंपल पड़ा हुआ सागर लिखता है, ये पेज नंबर 4 को समझ लिया जाए,
4 नंबर का पेज,
4 नंबर प्रस्तावना की 4 नंबर पेज,
प्रस्तावना में 4 नंबर का पेज हाँ निकालना। देखो ये स्वामित्व की बात चल रही है ना अभी, गुणित कर्मांशिक जीव की, हाँ देखो देखो आपका प्रश्न ऐसा है, 4 नंबर पृष्ठ पर जो स्वामित्व की बात की है मिला निकालना सब, उसमें हम पढ़ेंगे चौथी लाइन में, ये चौथी पांचवी लाइन में है उसको पहले से पढ़ेंगे। तो इस अनुयोग द्वार में स्वामित्व ने ये वेदना के ज्ञानावरण की वेदना, यानी ज्ञानावरण कर्म जो है वो कर्म के अधिक से अधिक परमाणु किसके पास है, उसका स्वामी कौन जीव है, इसकी बात चलेगी। तो ज्ञानावरणीय आदि कर्मों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट आदि पद किन किन जीवों में किस किस प्रकार से संभव है, इस प्रकार से उनके स्वामियों का विस्तार पूर्वक विचार किया गया है। उदाहरणार्थ ज्ञानावरणीय को लेकर उसकी उत्कृष्ट वेदना के स्वामी, उत्कृष्ट वेदना का स्वामी का अर्थ होता है ज्ञानावरण का जो कर्म जो है वो सत्ता में किसके अधिक से अधिक है, उसको कहेंगे उत्कृष्ट वेदना का स्वामी। वेदना यानी यहाँ कर्म के परमाणु की बात चल रही संख्या। तो कह गए कि जो जीव बादर पृथ्वी का एक जीवों में साधिक 2000 सागरोपम से हीन कर्म स्थिति प्रमाण रहा, 2000 सागर तक रहा ऐसा नहीं कहा, बादर पृथ्वी कायिकों में कितना रहा, हाँ 70 कोड़ा कोड़ी में से 2000 सागर कम किए,
70 तो वो नहीं किए, बात हम ज्ञाना करने की कर रहे हैं।
हाँ देखो इसको क्या कहते हैं, इसको कहा कर्म स्थिति, 70 कोड़ा कोड़ी सागर को 2000 सागर नहीं कहा, कर्म स्थिति कहा, कर्म उतने कर्म स्थिति प्रमाण वहां रहा, तो उतनी कर्मस्थिति प्रमाण वहां रहने के लिए कौन जीव होगा, तो वो उसके भी पहले त्रस में बहुत लंबी काल तक रहकर आया है, क्योंकि वहां उसने 70 कोड़ा कोड़ी सागर की कर्मस्थिति बांधी थी, तो वो मिटते मिटते उसको पृथ्वी कायकों में ही बार बार भ्रमण किया, तो कितना भ्रमण करेगा, तो अभी उसकी कर्मस्थिति जो वहां से बांधी वो अभी जब तक पूरी नहीं होती तब तक वहीं भ्रमण चला उसका, परंतु अभी वो उसमें 2000 सागर बाकी है तभी वो वहां से निकला 70 कोड़ा कोड़ी के बदले 2000 सागर पहले ही निकला वहां से, और वो 2000 सागर वो त्रस में अभी जाएगा वहां, पहले डायरेक्ट त्रस की बात शुरू नहीं की उन्होंने, त्रस में जाने के पहले उसको 70 कोड़ा कोड़ी वाली जो कर्म स्थिति वाला जीव लिया है वो काल हमको बताना है, कर्मों के कुछ लेना देना नहीं है। वो भले मोहनीय की है परंतु इनको कर्म स्थिति का काल बताना है। हाँ, उत्कृष्ट काल की बात है। बाद में ये भी बात आई कि ज्ञानावरण की बात तो 30 कोड़ा कोड़ी भी लेना चाहिए, ऐसी भी बात बीच में आई थी। दोनों पद्धति से उन्होंने बताया था। हाँ, ज्ञानावरणी तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर कहेंगे। ये सारे अपनी बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी इसमें, एक कर्म स्थिति वगैरह की बात। यही 7वें सूत्र में यही बात बताई है, पेज नंबर 32 में। यहाँ लिखा देखो, जो जीव बादर पृथ्वी का एक जीवों में कुछ अधिक 2000 सागरोपम से कम कर्म स्थिति प्रमाण, कर्म स्थिति में से 2000 सागर कम करना उतने प्रमाण काल तक रहा हो, तो उसके लिए वो पूछा था कि जीव ही उत्कृष्ट द्रव्य का स्वामी होता है यह कैसे जाना जाता है, वो तो बात अलग है। हाँ। ये पृथ्वी का एक क्यों लिया उसकी सारी है, बहुत डिटेल में हुई, आप पढ़ लेना उसको। हाँ, ये सारा समझाया है, आप पढ़ना, फिर कुछ कहीं आपको कोई गणे ये शंका हो तो फिर पूछ लेना। काल की अपेक्षा से जिस जहाँ कम समय तक रहता है परंतु वो उत्कृष्ट की ओर, ऐसे लिखे ना, दोनों ओर देखे ना उन्होंने, द्विइंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के, तो ये तो पंचेंद्रिय है, संगी पंचेंद्रिय है। नारकी की बात चल रही नहीं यहाँ पर? तो इसको अधिक से अधिक योग सिद्ध करना है और अंतर्मूर्त काल तक उसकी ओर वह रहा, इतना ही बात बताना है, क्योंकि उतने काल में उसने अधिक ग्रहण किया है, इतनी बात उनको सिद्ध करनी है। आठ समय तक रहता है परंतु वहाँ योग जघन्य है, हमको योग उत्कृष्ट लेना चाहिए, उत्कृष्ट योग की ओर वो अंतर्मूर्त तक रहा, यानी उसमें एक ही स्थान में नहीं, वेरिएशन होगा। एक किसी एक योग में कोई जीव अधिक काल रह ही नहीं सकता, एक ही योग स्थान में उसका रहना संभव ही नहीं है। अब 29वां सूत्र हम पढ़ेंगे, अपने 98 पृष्ठ पर आते हैं हम वापस। अब 29वां सूत्र पहले ऊपर से पढ़ेंगे। चरिमे जीव गुणहानि ठाणांतरे आवलियाय असंख्य जदि भागम अच्छिदो। अंतिम जीव गुणहानि स्थान में आवली के असंख्यातवे भाग काल तक रहा, अंतिम स्थान में नहीं कहा, अंतिम गुणहानि में। अभी हमने जीव गुणहानि देखी ना, तो उत्कृष्ट किसके होते हैं? संगी पंचेंद्रिय के होते हैं, और उसकी भी अंतिम गुणहानि ली, तो अंतिम गुणहानि स्थान में गुणहानि पूरी ली, अंतिम वो उत्कृष्ट स्थान ने योग स्थान नहीं लिया, अंतिम गुणहानि स्थान में वहां भी आवली के असंख्यात भाग तक रहा। काल योग मध्य की अपेक्षा से वो अंतर्मूर्त कहा था, परंतु यहाँ अंतिम गुणहानि में तो आवली के असंख्यात भाग इतना ही रह सकता है, उससे लगातार ज्यादा टाइम तक रह नहीं सकता। शंका, अंतिम जीव दुगुण वृद्धि में अंतर्मूर्त काल तक क्यों नहीं रहा? उसका समाधान नहीं, क्योंकि यानी वहां अंतर्मूर्त क्यों नहीं कहा, यहाँ कहते हैं आपने वो तो काल योग मध्य की अपेक्षा तो कहा था, वहां तो अंतर्मूर्त काल तक तो रहा, तो यहाँ अंतर्मूर्त तक क्यों नहीं रहा, अवली का असंख्यात वह भाग ही क्यों रहा? तो उसका समाधान करते हैं, क्योंकि वहां असंख्यात गुण वृद्धि असंख्यात गुण हानि भी नहीं पाई जाती। पहले तो हमने देखा था ना कितनी हानि और वृद्धि होती है, तो असंख्यात जहां होता है वहां चार प्रकार की हानि वृद्धि होती है। यहां कहते हैं गुणा वाली और गुण वृद्धि और गुण हानि नहीं होती, कौन सी? असंख्यात वाली। यदि कहा जाए कि असंख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण हानि के बिना भी अंतर्मूर्त काल तक रहता है, सो भी बात नहीं है, क्योंकि असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि का तथा इन्हीं तीन हानियों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात भाग है, ऐसा वचन है। क्या कहना चाहते हैं? यहाँ असंख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण हानि नहीं होती, तो यहाँ क्या क्या हो सकता है? तो असंख्यात भाग वृद्धि हो सकती है, संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि भी हो सकती है। असंख्यात के लिए भाग वृद्धि केवल कहा, एक गुणा वाला वहां होगा ही नहीं। और ये जो तीन हानियां बताई उसका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात भाग प्रमाण है, यानी इतने स्थान जाने के बाद वो कुछ हानि वृद्धि होती है, उसमें ये तीन ही हानि और वृद्धि हो सकती है। पर अंतिम जीव दुगुण वृद्धि में असंख्यात भाग वृद्धि असंख्यात भाग हानि ये दो ही होती है, शेष वृद्धि हानियां वहां नहीं होती है। असंख्यात भाग वृद्धि का अर्थ क्या है? असंख्यात से भाग दो और जितना वो संख्या है उसमें मिला दो, यानी एक योग से आगे का ये बढ़ता हुआ योग है वो असंख्यात भाग वृद्धि का होगा, उससे आगे वाला असंख्यात भाग वृद्धि का होगा, और हानि होगी तो भी असंख्यात भाग हानि वाली होगी। तो ये गुणा वाली वहां वृद्धि हानि नहीं होती, गुणित प्रमाण में नहीं होती है, ये तो बहुत अल्प अल्प ऐसी उतनी ही हानि या वृद्धि होगी। और वहां भी इसलिए वहां आवली के असंख्यात भाग काल तक ही रहता है ऐसा निश्चय करना चाहिए, उसमें अधिक काल तक नहीं, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी पलटता है ना उसमें, तो उसमें आवली का असंख्यात भाग ही ले लिया उन्होंने। ये उत्कृष्ट स्थान की ओर की बात बता रही, अंतिम जीव गुणहानि की बात चल रही है, वहां योग ज्यादा से ज्यादा है तो वहां अवली के असंख्यात भाग काल तक ही रहता है। फिर शंका, हाँ देखिए, गुणहानि नहीं है, भाग वृद्धि और भाग हानि है। देखो गुणहानि और गुणा वृद्धि में क्या है, असंख्यात का गुणा करो तो डायरेक्ट उतना होना, उसको गुणा वृद्धि कहते हैं, और असंख्यात गुण हानि को असंख्यात वा भाग रह जाना। हाँ, और भाग जब बीच में आता है, जैसे हम सादी फिगर ले लेते हैं, भाग वृद्धि और भाग हानि किसको कहना, जैसे हमने 1000 संख्या ली, 1000 को हमने 10 से भाग दिया, 100 से भाग दिया, 100 से भाग दिया तो 10 आ गए, तो 10 उसमें मिला देना 1000 में, ये भाग वृद्धि हुई, और 10 घटा देना ये भाग हानि हुई। अब कहते गुण वृद्धि और गुण हानि किसी के कहेंगे, हमने 100 को भी असंख्यात माना है ना, और 1000 भी असंख्यात है, तो 100 से हमें डायरेक्ट गुणा करेंगे, 1000 को 100 से गुणा करेंगे तो ये गुण वृद्धि हुई, और 1000 को 100 से भाग देंगे तो 10 रहेंगे, तो डायरेक्ट 1000 से 10 हो जाना, ये गुण हानि हुई, गुणित प्रमाण में हानि या गुणित प्रमाण में वृद्धि, ऐसा नहीं होगा, ये थोड़े थोड़े से ही बढ़ेगा। तो उसके लिए अभी पूरी कारण मीमांसा बताएंगे आगे।
पहले लाइन में कहते हैं कि वहाँ असंख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण
गुणहानि नहीं पाई जाती। हाँ, वहाँ कहते हैं कि वहाँ वो नहीं होती है तो नहीं होने दो, परंतु वहाँ अंतर्मूर्त काल तक रहता है ये तो मान्य करो। तो वहाँ कहते हैं कि अन्य जो वहाँ की हानियां है या वृद्धियां है, अन्य कौन कौन सी रहेगी? असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि। और ऐसे ही इनकी तीन हानियां ने असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि और संख्यात गुण हानि, ये तीन और तीन रहेगी ना ठीक। आठ में से देखो असंख्यात के चार गुण गुण वृद्धि होती है और गुण हानि भी होती है। असंख्यात पहले शुरू करें ना, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुणा वृद्धि और असंख्यात गुणा वृद्धि। इसमें से ये असंख्यात गुणा वृद्धि वाला निकाल दो, तीन रह गए, वृद्धि वाले तीन रह गए। अब हानि में, हानि में भी असंख्यात गुणा हानि वाला निकाल दो तो रिमेनिंग तीन, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि और संख्यात गुणा हानि। ये तीन और तीन हो सकते हैं, ये गुणा वृद्धि और गुणा हानि नहीं होते, ये बात बता दी। तो वहां कहते हैं उसके बिना जो तीन तीन रहेगी ना, गुण वृद्धि और गुण हानि, गुण नहीं भाग वृद्धि भाग हानि और संख्यात में तो दोनों ही ले लेना, यानी तीन वृद्धि और तीन हानि जो बताई है, तो उसमें अंतर्मूर्त तक रहता है ऐसा क्यों नहीं कहते हैं? ये दो वृद्धि हानि नहीं होती वो तो छोड़ दो, पर बाकी में क्यों नहीं कहते है? तो कहते हैं उसका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण, ऐसा वचन ऐसे सूत्र में बता दिया है। हाँ, वहां ज्यादा जितने स्थान है ना, जितने स्थान है बढ़ते हुए योग के स्थान है, तो उसमें कितने काल तक रह सकता है उसकी बात चल रही है। गुण वृद्धि और गुण हानि का अर्थ है क्या? ये योग अधिक अधिक बढ़ते हुए योग के अलग अलग स्थान है, उन सब में मिलकर भी ये वृद्धि हानि होती है, फिर भी उसमें रहने का काल कितना है? ये हानि होने का जघन्य एक समय में वो वृद्धि हानि हो सकती है एक तो, और दूसरी बात अवली का संख्या का। अभी वो फिर अंतिम गुण हानि की बात करें, पर अंतिम जीव दुगुण वृद्धि में असंख्यात भाग वृद्धि और असंख्यात भाग हानि ये दो ही होती है, यानी वहां वो संख्यात भाग वृद्धि संख्यात गुण वृद्धि भी नहीं होती है। शेष वृद्धि हानियां वहां नहीं होती, इसलिए वहां अवली के असंख्यात भाग काल तक ही रहता है ऐसा निश्चय करना चाहिए। जीव दुगुण वृद्धि मैंने अभी ये अंत की ओर योग स्थान बढ़ता हुआ योग स्थान है ना, वो डबल 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 हो जाता है कितने स्थानों में, उसके भी पूरी बात आने वाली है। पहले में पहले उन्होंने ऐसा वचन है ये जो लिखा है, तो दैट इज अ जनरल क्या कथन किया कि असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि का और ऐसे तीन हानियों का काल एक समय जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अवली का असंख्यात भाग। अब यहाँ कहते अभी जो अंतिम जो दुगुण वृद्धि है, जीव दुगुण वृद्धि है, वहां तो ये अन्य भी नहीं है, वो क्या पॉसिबल है? वहां असंख्यात भाग वृद्धि और असंख्यात भाग हानि, ये दो ही वहां वृद्धि हानि संभव है। नीचे की ओर, ये उत्कृष्ट योग की बात चल रही है, उत्कृष्ट की ओर वाला जो अंतिम जो है वहां पर। हाँ, फिर शंका, वहां असंख्यात भाग वृद्धि और असंख्यात भाग हानि ही होती है, अन्य वृद्धि हानियां नहीं होती, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? तो कहते यह बात युक्ति से जानी जाती है। अब उसके लिए वो युक्ति बताएगी पूरे यथा, द्विन्द्रिय पर्याप्त के जघन्य परिणाम योग स्थान से लेकर एक एक प्रक्षेप अधिक के क्रम से योग स्थान एक प्रक्षेप कम दुगुने योग स्थान के प्राप्त होने तक बढ़ते हुए चले जाते हैं। पुनः उसके ऊपर एक प्रक्षेप के बढ़ने पर अधस्तन दुगुण वृद्धि स्थान से दुगुना स्थान जाकर यहाँ की प्रथम दुगुण वृद्धि हो जाती है। ये जो वृद्धि हानि वो अलग ही बात है। अभी तक तो हमने काल योग मध्य की बात देखी और जीव योग मध्य की बात देखी, तो ये पढ़कर तो मुझे भी पहले बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, क्या कौन सी बात चल रही है। तो हमने पहले ये कर्मकांड में भी देखा था, वहां तो जघन्य योग स्थान से, कौन सा जघन्य, बिल्कुल वो सूक्ष्म लब्धि पर्याप्त निबोध वाला, वहां से लेकर वो जिसको जघन्य योग स्थान कहते हैं, वहां से लेकर बढ़ते 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 योग जो है वो संगी पंचेंद्रिय के उत्कृष्ट स्थान तक सभी को लगातार हम देखेंगे। तो उसमें क्या है कि जघन्य योग स्थान, एक एक योग स्थान में क्या होता है, हमने परसों ही देखा था। अभी एक योग स्थान की बात है जिसको हम जघन्य योग स्थान कहते हैं, उस एक योग स्थान में क्या है, तो एक जीव के असंख्यात प्रदेश है, उसमें से कितने ही प्रदेशों में मिनिमम योग है, उससे बढ़ते हुए अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा योग है और परंतु प्रदेशों की संख्या कम है, इस तरह से यहां भी ये निषेक रचना बता सकते हैं। तो उसमें कहा था एक एक प्रदेश को एक वर्ग कहेंगे, जिनमें जिनमें समान अविभाग प्रतिच्छेद यानी समान योग है, ऐसे प्रदेशों के समूह को वहां वर्गणा कही थी। तो ये पहली वर्गणा में योग मिनिमम है और संख्या ज्यादा है प्रदेशों में, ऊपर ऊपर प्रदेश कम होते जाते हैं और अविभाग यानी योग बढ़ता चला जाता है। इस तरह से एक वर्गणा, दूसरी वर्गणा, तीसरी वर्गणा, चौथी वर्गणा, जब इस वर्गणा का अविभाग प्रतिच्छेद दुगुना हो जाता है, वहां तक उसके नीचे की सब वर्गणाओं के समूह को हम स्पर्धक कहते हैं। ऐसे एक स्पर्धक, दो स्पर्धक, तीन स्पर्धक, ऐसे हम देखते हैं। ऐसे असंख्यात स्पर्धक जाने पर ये यहाँ जितनी संख्या है प्रदेशों की वो आधी होती है। ये अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा यहाँ गुणहानि कहेंगे, प्रदेशों की संख्या हाफ हुई और यहाँ योग तो बढ़ता चला जाता है। ऊपर भी ऐसे ही फिर वर्ग वर्गणा स्पर्धक हम समझाएंगे, यहाँ भी असंख्या स्पर्धक जाने पर दूसरी गुणहानि और असंख्या स्पर्धक जाने पर तीसरी गुणहानि, इस तरह से नाना गुणहानियों को मिलकर ये पूरा योग स्थान होता है। ये पहले में पहला जघन्य योग स्थान है। इसके आगे वाला जो योग स्थान है उसमें क्या होगा, तो उसमें जो जघन्य स्पर्धक की कहो या जघन्य वर्गणा की कहो, पूरा स्पर्धक ही ले लेंगे। अभी यहाँ जघन्य स्पर्धक में जितना योग है उससे यहाँ के जघन्य स्पर्धक में योग बढ़ेगा, तभी तो हम दूसरा योग स्थान कहेंगे उसका, पूरे ही उसके योग बढ़ेंगे ना, सब में ही बढ़ेंगे। तो जघन्य स्पर्धक की अपेक्षा कितना कितना है ऐसा बताते। तो यहाँ वाले जघन्य स्पर्धक से दूसरे स्थान वाले जघन्य स्पर्धक में सूचंगुल का असंख्यात भाग प्रमाण योग बढ़ता है हरेक में। ये तो फिक्स प्रक्षेप जिसको कहते हैं, ध्रुव है वो, उसकी संख्या निश्चित है, तो उतना उतना ही बढ़ेगा, तो आगे आगे का योग स्थान होगा। ये जघन्य स्पर्धक की भाषा में उसको समझाया है। जघन्य योग स्थान का जो जघन्य स्पर्धक है उससे आगे वाला दूसरे स्थान पर जो योग स्थान है उसमें कितना अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ता है, स्पर्धक कितने से बढ़ा, तो कहेंगे सूचंगुल के असंख्यात भाग से बढ़ा, और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान। तो इस तरह से ये स्पर्धक भी बहुत बढ़ाएगा। वहां कहा था अपूर्व स्पर्धक होता है, और टोडरमल जी ने ऐसा भी लिखा है कि अपूर्व स्पर्धक का क्या अर्थ होता है मुझे भी नीके समझ में नहीं आ रहा है। फिर ऐसे होते होते इस योग स्थान से दुगुना योग जिसमें होता है, ऐसे कोई विशिष्ट योग स्थान है, दुगुना हो गया ना, योग दुगुना हो गया, जघन्य से हमने शुरू किया था, ये तो योग दुगुना हो गया। अभी हम यहाँ कहते हैं यहाँ जघन्य योग था, आगे अनेक स्थान जाने पर योग स्थान यानी दुगुना हो गया, वो योग दुगुना हो गया, आगे और जाके तो उससे भी दुगुना हो गया। तो हम चार ज कहेंगे, उससे आगे आठ ज हो जाए, इस तरह से वो जघन्य योग योग जो है वो दुगुना 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 होता चला जाता है। इसको दुगुण वृद्धि कहां तक, अंतिम स्थान तक। अभी अंतिम जो उत्कृष्ट योग है उसके भी पहले ये जो इसको दुगुण वृद्धि दुगुण वृद्धि दुगुण वृद्धि उतने उतने स्थान जाने पर दुगुण वृद्धि होती है, ऐसे ही अंतिम दुगुण वृद्धि यहां पर हो गई। इसको कहते हैं वो दुगुण वृद्धि के स्थान। अब यहाँ क्या बताना चाहते हैं देखिए, इसको अभी हम पढ़ते। द्विन्द्रिय पर्याप्त के जघन्य परिणाम योग स्थान से लेकर, अब यानी उन्होंने डायरेक्ट अभी द्विन्द्रिय पर्याप्त की जो कुछ यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर विशिष्ट जघन्य योग स्थान है, ये तो हमने सभी जीवों की अपेक्षा जघन्य स्थान देखा था। अब यहाँ द्विन्द्रिय पर्याप्त का जो जघन्य योग स्थान है, ये परिणाम योग स्थान से लेकर एक एक प्रक्षेप अधिक के क्रम से, एक एक प्रक्षेप हमने देखा था ध्रुव होता है उसमें, उतने उतने प्रक्षेप उसमें मिलाते जाने पर एक ऐसी पोजीशन आती है कि योग डबल हो जाता है, उसको कहेंगे दुगुण वृद्धि। एक प्रक्षेप कम दुगुणे योग स्थान के प्राप्त होने तक बढ़ते हुए चले जाते हैं, पुनः उसके ऊपर एक प्रक्षेप के बढ़ने पर अधस्तन दुगुण वृद्धि स्थान से दुगुना स्थान जाकर यहाँ की प्रथम दुगुण वृद्धि हो जाती है। अभी ये कितने स्थान जाकर होती है, यहाँ इसके पीछे जितने स्थान जाने पर ये वृद्धि हुई थी उससे डबल स्थान जाने पर इसकी वृद्धि होती है, इसकी वृद्धि होने के लिए उतने स्थान आगे जाने पर उसकी वृद्धि होती है। पुनः ये पहली दुगुण वृद्धि हुई ना, इसके आगे के क्योंकि हमने वो जघन्य योग स्थान से नहीं लिया था, द्विन्द्रिय पर्याप्त के परिणाम योग स्थान से शुरू किया हमने, उसके पहले भी दुगुण वृद्धि होती आई थी इसलिए अधस्तन दुगुण वृद्धि कही थी। तो अभी ये द्विन्द्रिय पर्याप्त की यहाँ विशिष्ट दुगुण वृद्धि हो गई, यानी पहली दुगुण वृद्धि हो गई। इस प्रकार दुगुने दुगुने स्थान जाकर, यानी ये जो डबल जो होना है ना, इतना योग यहाँ डबल हुआ उसके लिए जितने स्थान लगे, हम मान लेते पांच स्थान जाकर ये दुगुना हुआ, तो उसके आगे के दस स्थान जाकर ये दुगुना हो जाएगा, उसके आगे बीस स्थान जाकर ये दुगुना होगा, क्योंकि प्रक्षेप तो उतना उतना ही होता है उसमें। हाँ, स्पर्धक तो अपने अपने हैं, इसमें स्पर्धकों में अविभाग प्रतिच्छेद है। हाँ, 200 का 400। हाँ, इसलिए स्थान ज्यादा लगते हैं क्योंकि वो अविभाग प्रतिच्छेद दो गुना यानी चार गुना हुए ना, दो गुना का दो गुना चार गुना हुआ, और उस प्रक्षेप यानी बढ़ती हुई संख्या तो उतनी उतनी है, इसलिए वहां दुगुने स्थान लगते हैं। यानी योग स्थान यहाँ पांच योग स्थान में डबल हुआ था, तो डबल का डबल यानी चार गुना होने के लिए 10 योग स्थान लगते हैं, चार का 8 होने के लिए उससे भी डबल योग स्थान लगते हैं। ये दुगुने दुगुने स्थान जाकर दुगुण वृद्धि होती है, दुगुण वृद्धि यानी योग डबल होता है और स्थान यानी इतने नंबर ऑफ स्थान चले जाते हैं। वहां से शुरू होता है सूक्ष्म लब्धि पर्याप्त के, वहां से शुरू होता है, परंतु यहाँ समझाने के लिए त्रस पर्याप्त की बात की उन्होंने। वैसे तो 14 ही जीव समास में योग स्थान होते हैं ना, 14 के 14 में योग स्थान पाए जाते हैं, हर एक में उपपाद वाले भी होते हैं, एकांत वृद्धि वाले भी होते हैं और परिणाम योग स्थान भी हर एक जीव में पाए जाते हैं, 14 ही जीव समासों में पाए जाते, परंतु यहाँ त्रस पर्याप्तों की बात चल रही है अपनी, क्योंकि उसी में हमने त्रस में आया है ना ये जीव, उसकी बात चल रही है। इस प्रकार दुगुने दुगुने स्थान जाकर अंतिम दुगुण वृद्धि के प्रथम योग स्थान के प्राप्त होने तक सब दुगुण वृद्धियां उत्पन्न होती है। डबल डबल स्थान जाते 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 अंतिम दुगुण वृद्धि और उसमें यहाँ पर वृद्धि हुई दोगुनी और ये पहला योग स्थान। उसके आगे भी कुछ योग स्थान है, अब दुगुण वृद्धि वाले तक नहीं है, परंतु ये अंतिम दुगुण वृद्धि का प्रथम योग स्थान है। देखो, अंतिम दुगुण वृद्धि के प्रथम योग स्थान के प्राप्त होने तक सब दुगुण वृद्धियां उत्पन्न होती है। अब अंतिम गुण वृद्धि के नीचे की सब गुणहानि शलाकाओं का विरलन कर, क्या कहते हैं, अभी कितने बार दुगुण वृद्धि हुई, कितने ही बार होगी ना, सुचंगुल का संख्या तो अभाग, वो तो एक एक में वो कितना अविभाग बढ़ा उसकी बात यहाँ नहीं है। हाँ, असंख्यात बार हुई, तो जितनी बार दुगुण वृद्धि हुई, देखो क्या कहते हैं, ये एक बार हुई तो उसको गुणहानि शलाका का, कितने नंबर ऑफ गुणहानि, तो अंतिम गुण वृद्धि के नीचे की सब गुणहानि शलाकाओं का विरलन कर और उसे दुगुनित कर जो अन्योन्य अभ्यस्त राशि उत्पन्न होती है, उससे द्विन्द्रिय पर्याप्त के जघन्य परिणाम योग स्थान संबंधी प्रक्षेप भागहार को गुणित करने पर अंतिम योग संबंधी दुगुण हानि के प्रथम योग स्थान का प्रक्षेप भागहार होता है। ये तो प्रक्षेप वगैरह निकालने का अपने को प्रक्षेप भागहार या नहीं बताया, जिस संख्या से भागने पर उसका प्रक्षेप निकलता है उसको कहा है प्रक्षेप भागहार। तो यहाँ द्विन्द्रिय जो स्थान हमने शुरू किया था जहां से, तो यहाँ का जितना प्रक्षेप भागहार था उसको ये बीच वाले जितनी गुणहानियां हैं उस गुणहानियों की अन्योन्य अभ्यस्त राशि निकालना और उस अन्योन्य अभ्यस्त राशि से इस प्रक्षेप भागहार को गुणा करना, तो अंतिम योग संबंधी दुगुण हानि के प्रथम योग स्थान का प्रक्षेप भागहार होता है, उसका विरलन कर अंतिम दुगुण वृद्धि के प्रथम योग स्थान को समखंड कर देने पर विरलन रूप के प्रति एक एक प्रक्षेप प्राप्त होता है। अब यहाँ जो कुछ विशिष्ट भागहार है, यहाँ के भागहार से ये इतने गुना हो गया, अब यहाँ जितनी राशि है ना, देखो ये जो प्रक्षेप भागहार है उसको यहाँ विरलन कर देना, एक 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 लिखना और उसके ऊपर ये प्रथम योग स्थान को समखंड कर देना और उसके एक एक प्रक्षेप प्राप्त होता है। प्रक्षेप भागहार उसका, यानी इसमें कौन कौन कितने कितने मिलाने पर आगे का स्थान मिलेगा उसको प्रक्षेप भागहार का। यानी प्रक्षेप भागहार भी दुगुना दुगुना होता जाना चाहिए, तभी तो ये प्रक्षेप भी दुगुना दुगुना होता जाएगा प्रत्येक दुगुण वृद्धि में। एक एक ये डबल हो जाता है ना, वहां उसका प्रक्षेप भी डबल होना चाहिए। तो एक योग स्थान है तो उसमें कितने, अभी यहाँ जितना प्रक्षेप भागहार है उसको हमने विरलन कर दिया और उसके एक के प्रति इसको समखंड करके दिया, तो जितना एक भाग आया उसका मिलाया तो यहाँ का दूसरा योग स्थान आया, उसमें उतना मिलाया आगे वाला स्थान आया, उसमें उतना ही मिलाया उसके आगे वाला स्थान आया, एक 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 प्रक्षेप मिलाते हुए आगे का योग स्थान आएगा। हाँ, वो तो हमने टोटल सब में लिया था, यहाँ ये बात नहीं है, ये पर्याप्त उनके परिणाम योग स्थानों में ये अलग कुछ बात बता रहे। वहां सुचंगुल का असंख्या तो भाग हमने देखा था ना, वो तो जघन्य लब्धि अपर्याप्त से लेकर उसकी बात की थी, वो डबल डबल होता है उसकी बात की थी, यहाँ तो परिणाम योग स्थान लिए है द्विन्द्रिय पर्याप्त के। अभी उसमें ऐसा ही समझना कि दुगुनी होने तक उसका प्रक्षेप उतना ही रहेगा, बाद में उसका प्रक्षेप बढ़ेगा। तभी तो उन्होंने कहा कि यहाँ का जो प्रक्षेप अलग है, यहाँ का प्रक्षेप अलग है। तो यहाँ का प्रक्षेप कितना, इसके असंख्यात भाग है, वो कितना निकालना। तो यहाँ जो प्रक्षेप भाग आ रहा है उसको विरलन कर देना, यहाँ के योगस्थान की जो संख्या है उस पर समखंड करके देना, उसमें से एक भाग इसका एक प्रक्षेप है, एक प्रक्षेप है ने उसमें मिला देना, यह असंख्यात भाग वृद्धि वाला ही होगा। वहां ये गुणांक के रूप में नहीं होगा, ये एक प्रक्षेप का प्रमाण कितना होगा, तो वही बात बता रहे हैं। देखो ये नंबर एक तीन तीन छह और सातवीं लाइन में देखो, पहली लाइन में हमने क्या देखा था कि वो एक एक प्रक्षेप प्राप्त होगा, उनमें से एक प्रक्षेप उसके ऊपर बढ़ाने पर असंख्यात भाग वृद्धि होती है। यहाँ का जो योग स्थान है अंतिम गुण वृद्धि वाला, ये अंत में दुगुणी वृद्धि हुई, वहां पर दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा करते करते यहाँ पर आए। यहाँ का पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, ऐसे यहाँ कुछ स्थान है, तो उसमें आगे वाले स्थान में कितना बढ़ा, तो असंख्यात भाग बढ़ा। वो कैसा निकालना उसके लिए उन्होंने गणित बता दिया, प्रक्षेप भागहार को विरलन करो, उसके ऊपर इसका जो योग है वो समखंड करके दे दो, जितना संख्या आए, क्योंकि ये असंख्यात में विरलित कर दिया ना उसने, यहाँ का भागहार भी असंख्यात है और उसके प्रति इसके समखंड करने में इसका असंख्यात भाग प्रक्षेप हुआ वो उसमें मिलाया, तो आगे वाला योग स्थान आ गया। फिर द्वितीय प्रक्षेप के बढ़ाने पर भी असंख्यात भाग वृद्धि ही होकर तब तक जाती है जब तक इसमें प्रक्षेप भागहार को उत्कृष्ट संख्या से खंडित करने पर उसमें से एक कम एक खंड मात्र प्रक्षेप प्रविष्ट न हो जावे। देखो क्या कहते हैं, इतने ये तो असंख्यात है, प्रक्षेप भागहार को विरलन किया था उसमें तो असंख्यात हुए थे, परंतु उसमें तो कितने ही लेना, ऐसे करते 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 कितने ही भाग हम आगे जाएंगे, तो कितने जाएंगे, तो देखो क्या कहते वहां पर, असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि होती है, एक एक के प्रति असंख्यात भाग वृद्धि होती है। कब तक, तो तब तक जाती है जब तक इसमें कितने प्रविष्ट हो जाए, प्रक्षेप भागहार को उत्कृष्ट संख्या से खंडित करने पर, यह है तो असंख्यात, अभी उसको उत्कृष्ट संख्या से खंडित किया, उसमें से एक कम एक खंड मात्र प्रक्षेप प्रविष्ट न हो जावे, यानी उत्कृष्ट संख्या से भाग देने पर जो कोई एक खंड होगा उतने इसमें प्रविष्ट, कितने हो गए, असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि बहुत बार हुआ अपनी संख्या में। उसके बाद क्या होगा, उसके ऊपर एक प्रक्षेप के बढ़ाने पर संख्यात भाग वृद्धि प्रारंभ होती है। नहीं, अभी यहाँ के आगे जो यहाँ प्रक्षेप बढ़ाया तो वहाँ कितना बढ़ा, तो संख्यात भाग वाला बढ़ा, संख्यात से भाग से बढ़ा, ये तो फिक्स इसमें बढ़ता गया, जैसे एक 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 बढ़ते हुए एकदम दस बढ़े तो हम क्या कहेंगे, ज्यादा बढ़े ना एकदम, तो उसको कहेंगे वो संख्यात भाग वृद्धि हुई वहां पर। इस प्रकार दो तीन आदि, दो तीन चार आदि एक कम प्रक्षेप भागहार प्रमाण प्रक्षेपों के प्रविष्ट होने तक संख्यात भाग वृद्धि ही होती है। तो ये संख्यात भाग वृद्धि हुई तब तक, हाँ एक फिक्स संख्या है, क्योंकि एक 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 विरल हमने उसमें बढ़ा दिया, देखो हजार में हमने एक 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 मिलाया, फिर एक एक मिलाते हुए हजार और दस हुए। तो ये हमने सवा भाग उसमें मिला दिया, फिर ग्यारह बारह तेरह करते 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 ऐसे मान लेते हैं सौ बढ़ गए, ग्यारह सौ हो गए, तो हम उसको कहेंगे संख्यात भागोवृद्धि हो गई। ऐसे करते 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 दो हजार हो गए तो क्या कहेंगे, दो गुणा हुए ना, तो संख्यात गुणवृद्धि कहेंगे। फिक्स अमाउंट ही हम उसमें डालते गए, फिक्स अमाउंट डालते डालते, क्योंकि हमने प्रक्षेप एक ही है, प्रक्षेप को कैसे निकालना, हमने इसी के तो खंड किए थे, मूल संख्या के हमने खंड किए थे और उसमें वो एक एक खंड मिलाते गए। तो इसीलिए अभी 10 के बदले हम कहेंगे कि 9 भाग तक मिलाए तो क्या कहेंगे, असंख्यात भाग वृद्धि, और 10 मिलाने पर 10 की वृद्धि हो गई तो हम कहेंगे वो संख्यात भाग वृद्धि, और 10 10 मिलाते 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 ऐसे 10 बीच बीच में असंख्यात भाग वृद्धि है ही है, ऐसे होते 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 एकदम 100 बढ़ गए, हम कहेंगे संख्यात भाग वृद्धि। और फिर 100 100 मिलते मिलते हजार के 2000 हुए तो हम कहेंगे दो गुणा हुए, तो उसको कहेंगे दुगुण वृद्धि, यानी संख्यात गुणा वृद्धि का मिनिमम स्थान है वो। हाँ, वो अनंत गुणा वृद्धि वो शर्षान हुए, ये चार ही लेना है उसमें, इसमें चार लेना है। तो दुगुण वृद्धि हुई ना यहाँ पर, देखो दुगुण वृद्धि का पुनः अंतिम प्रक्षेप के प्रविष्ट होने पर दुगुण वृद्धि होती है। देखो हमने हजार मूल संख्या ली थी और हजार को ही हमने एक 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 में बांटा था, उसमें एक 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 मिलाते गए, अंतिम जो मिलाया तो हजार के 2000 हो गए, तो दुगुण वृद्धि हो गई। इस प्रकार अंतिम गुणहानि में दुगुण वृद्धि को यहाँ संख्यात गुणी वृद्धि कह सकते हैं, दो है मिनिमम संख्यात है तो दुगुण वृद्धि को ही संख्यात गुण वृद्धि हुई। अब संख्यात गुण वृद्धि के बाद ये तो हमारे प्रक्षेप समाप्त हो गए ना, अभी दुगुण वृद्धि में आगे नए प्रक्षेप शुरू हो जाएंगे। अभी अंतिम गुणहानि गुण वृद्धि है, दुगुण वृद्धि वाला अंतिम स्थान देखा था हमने, इसके आगे दुगुण वृद्धि होने वाली नहीं है। तो संख्यात गुण वृद्धि के आगे असंख्यात गुण वृद्धि होने वाली ही नहीं है, दुगुण वृद्धि के ही हम स्थान देख रहे हैं, तो इसलिए तीन ही वृद्धियां होगी यहाँ पर। इस प्रकार अंतिम गुणहानि में तीन ही वृद्धियां होती है, और पहली वाली जो है सब अपनी अपनी, उसके जघन्य की अपेक्षा वो असंख्यात हम कह सकते हैं, उसको असंख्यात गुणा तक चले जाएंगे उसकी बात नहीं है जघन्य की अपेक्षा, परंतु हम अंतिम दुगुण वृद्धि में आगे देख रहे हैं। अंतिम दुगुण वृद्धि के बाद जितने स्थान है उसके बाद दुगुण वृद्धि होने वाले नहीं है, क्योंकि वो प्रक्षेप बढ़ाते हैं उसको दुगुण वृद्धि होगी, पर अगर उसको अंतिम कहेंगे तो फिर उसके पहले वाले को हाँ द्विचरम कहना पड़ेगा, परंतु हमने कह दिया उसको अंतिम दुगुण वृद्धि, तो उसमें तीन ही वृद्धियां संभव है, अंतिम भी डाल देंगे तो भी वो संख्यात गुण वृद्धि होगी उसकी। अब पूर्व भागहार के उत्कृष्ट संख्यात मात्र खंड करके उनमें से एक खंड मात्र प्रक्षेपों के प्रविष्ट होने पर जो योग स्थान हो उसको आधार करके वृद्धि का विचार करते हैं, क्या कहते हैं। पहले तो हमने बहुत सारे खंड किए थे विरलन करके, असंख्यात खंड करके किए थे, तभी तो असंख्यात भाग वृद्धि असंख्यात भाग वृद्धि, क्योंकि उस योग स्थान के हमने असंख्यात खंड कर दिए थे। अब कहते हैं अभी उसका संख्यात खंड कर दो, उत्कृष्ट संख्यात वाला, तो एक एक के प्रति विरलन करके देंगे तो एक एक की वैल्यू कितनी होगी, संख्यात भाग संख्यात भाग संख्यात भाग, तो उसके आधार से अभी वृद्धि का विचार करते हैं। यथा अर्ध योग प्रक्षेप भागहार को, ये पूरा योग भागहार नहीं लिया, अभी अर्ध ही लिया, पूरा योग भागा तो उसको विरल नहीं किया तो असंख्यात चला गया था। उसको उत्कृष्ट संख्या से खंडित कर उनमें से एक खंड का उसी में प्रक्षेप करने पर विवक्षित योग स्थान का प्रक्षेप भागहार होता है। ये प्रक्षेप भागहार निकालना, उसके लिए उन्होंने क्या किया, ये अर्ध क्यों लिखा मुझे पता नहीं चला, परंतु अर्ध योग प्रक्षेप भागहार को उसके उत्कृष्ट खंड के उत्कृष्ट संख्या से उसको भाग दिया और उसके एक खंड का उसी में प्रक्षेप किया, उसी में मिला दिया। तो विवक्षित योग स्थान का प्रक्षेप भागाकर आया। इस प्रक्षेप भागहार का विरलन कर विवक्षित योग स्थान को समखंड कर देने पर प्रत्येक विरलन के प्रति एक एक प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। इनमें से एक प्रक्षेप को विवक्षित योग स्थान में मिलाने पर असंख्यात भाग वृद्धि होती है। इस प्रकार यहाँ के प्रक्षेप भागहार को उत्कृष्ट संख्या से खंडित कर उसमें एक कम एक खंड मात्र प्रक्षेपों के प्रविष्ट होने तक असंख्यात भाग वृद्धि ही होकर जाती है। जैसे पहले हमने देखा था एक एक प्रक्षेप मिला है तो कितना हुआ, असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, और पुनः एक प्रक्षेप के प्रविष्ट होने पर संख्यात भाग वृद्धि होती है क्योंकि हमने वो संख्यात खंड करके तो संख्यात भाग वृद्धि हो जाएगी। पूर्वोक्त असंख्यात भाग वृद्धि स्थान के वृद्धि के स्थान से यह असंख्यात भाग वृद्धि का स्थान विशेष अधिक है। पूर्वोक्त असंख्यात भाग वृद्धि वाला जो हमने पहले देखे थे ना, अब यहाँ पर जो घटित कर रहे हैं अन्य भागहार लिया था तो यहाँ का असंख्यात भाग वृद्धि विशेष अधिक है क्योंकि वहां तो असंख्यात में खंडित कर दिया था और यहाँ अर्ध भागहार लेकर उसमें संख्यात खंड कर दिए थे तो कितना अधिक है। अर्ध योग प्रक्षेप भागहार को उत्कृष्ट संख्यात के वर्ग से खंडित करने पर उनमें से एक खंड मात्र अधिक है। अब ये वहां विरलन का प्रमाण ज्यादा था, यहाँ कम है, अभी उसके लिए उन्होंने कुछ गणित बता दिया है, उतने एक अधिक है। इस प्रकार यहाँ संख्यात भाग वृद्धि का प्रारंभ होकर संख्यात भाग वृद्धि तब तक जाती है जब तक कि एक कम उत्कृष्ट संख्यात मात्र शेष खंड सब नहीं प्रविष्ट हो जाते। ये जो उत्कृष्ट संख्यात खंड किए थे सब प्रविष्ट हो जाएंगे तो दुगुनी हो जाएगी, तो संख्यात गुना वृद्धि हो जाएगी। पहले क्या होता था, असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, ऐसे होते होते संख्यात भाग तक आ गया और उसमें प्रक्षेप मिलाते गए। हाँ, तो जब सब खंड प्रविष्ट हो जाएंगे तो क्या हो गया, दो गुना हो जाएगी ना, अभी तब दुगुण वृद्धि होती है, परंतु यहाँ दुगुण वृद्धि नहीं उत्पन्न होती क्योंकि अभी अंतिम दो खंड मात्र प्रक्षेपों का प्रवेश नहीं हुआ है, ये अंतिम दुगुण वृद्धि है ना। ये अंतिम दुगुण वृद्धि की बात चल रही है यहाँ पर, इसलिए उसके सभी खंड प्रवेश हो जाएंगे तो और एक दुगुण वृद्धि होगी, परंतु उतनी नहीं हो रही है, ये बात बता रहे। यानी यहाँ असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि ही हो रही है, ये दो गुना तक उसकी संख्या नहीं, इतने प्रक्षेप उसमें नहीं मिलाए हैं, इतने वहां योग स्थान है ही नहीं है। अथवा अभी दूसरी पद्धति से बताते हैं, अर्ध योग को उत्कृष्ट संख्यात से खंडित कर उनमें से एक खंड अधिक योग स्थान को विवक्षित कर वृद्धि की प्ररूपणा इस प्रकार कहनी चाहिए। अर्धयोग किसे कहना मुझे भी पता नहीं चला है, कहीं कहीं अर्ध योग प्रक्षेप भागहार लिखा है और कहीं कहीं अर्ध योग कहा है। हम पढ़ते देखते आगे इसका अर्थ आएगा तो, क्योंकि यहाँ ऊपर भी लिखा अधवा अर्ध योगम उक्कस्य संखेज्येन खंडिदून। देखो पढ़ते, अथवा अर्धयोग को उत्कृष्ट संख्यात से खंडित कर उनमें से एक खंड अधिक योग स्थान को विवक्षित कर वृद्धि की प्ररूपणा इस प्रकार करनी चाहिए, यथा एक अधिक उत्कृष्ट संख्यात का विरलन कर विवक्षित योग स्थान को समखंड कर देने पर प्रत्येक विरलन रूप के प्रति अर्धयोग को उत्कृष्ट संख्या से खंडित कर एक खंड प्रमाण प्राप्त होता है, क्योंकि अर्धयोग की अपेक्षा यह एक खंड अधिक देखा जाता है। पहले उन्होंने क्या किया था, अर्धयोग को उत्कृष्ट संख्या से खंडित करना, उसका एक खंड उसमें से एक खंड अधिक योग स्थान को विवक्षित कर वृद्धि की प्ररूपणा इतनी करनी चाहिए। अर्धयोग और उस योग स्थान ऐसा उसके उस विवक्षित योग स्थान से अर्धयोग जिसमें है ऐसा योग स्थान लिया होगा शायद, ऐसा लगता है। हाँ हाँ, जगन्य परिता संख्यात हो गए, उत्कृष्ट संख्यात में एक मिला है, जगन्य परिता संख्यात हुआ। देखो फिर हम पढ़ते आगे, पहले में पहले क्या किया था, अर्धयोग को उत्कृष्ट संख्या से खंडित कर उनमें से एक खंड अधिक योग स्थान को विवक्षित कर वृद्धि की प्ररूपणा करते, यानी एक अधिक उत्कृष्ट संख्यात का विरलन कर, यानी जगन्य परिता संख्यात का विरलन कर विवक्षित योग स्थान को समखंड कर देने पर प्रत्येक विरलन रूप के प्रति, अभी किसमें किस कितना कितना आया प्रत्येक रूप के प्रति, तो कहते अर्धयोग को उत्कृष्ट संख्यात से खंडित कर एक खंड प्रमाण प्राप्त होता है। क्योंकि अर्धयोग की अपेक्षा यह एक खंड अधिक देखा जाता है। पुनः इसके नीचे अर्धयोग प्रक्षेप भागहार को उत्कृष्ट संख्या से खंडित करके एक खंड को विरलत कर उपरिम विरलना के एक अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य को समखंड कर देने पर प्रत्येक एक के प्रति एक प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। उसमें से एक प्रक्षेप को ग्रहण कर विवक्षित योग को प्रतिराशि करके, प्रतिराशि यानी उसको बेस बना के मिलाने पर असंख्यात भाग वृद्धि रूप योग स्थान होता है। पुनः द्वितीय प्रक्षेप को ग्रहण करके प्रथम असंख्यात भाग वृद्धि स्थान को प्रतिराशि कर मिलाने पर द्वितीय असंख्यात भाग वृद्धि का स्थान उत्पन्न होता है। इस प्रकार परिपाटी से सब विरलन मात्र प्रक्षेपों के प्रविष्ट होने पर भी असंख्यात भाग वृद्धि समाप्त नहीं होती। पुनः द्वितीय खंड को ग्रहण कर अधस्तन विरलना के समखंड कर देने पर पूर्व के समान प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। अभी क्या इसको खाली पढ़ ही रहे, उसके भी कुछ ख्याल में नहीं आ रहे, आगे पढ़ेंगे। देखो अब इस विरलना के उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण खंड करके उनमें एक खंड मात्र प्रक्षेप जब तक प्रविष्ट होते हैं तब तक असंख्यात भाग वृद्धि ही होती है। पश्चात अन्य एक प्रक्षेप के प्रविष्ट होने पर संख्यात भाग वृद्धि का प्रारंभ होता है, क्योंकि विवक्षित योग को उत्कृष्ट संख्या से खंड करने पर, अर्ध योग को उत्कृष्ट संख्या से खंडित करने पर एक खंड का, तथा उसको ही उसके वर्ग से खंडित करने पर एक खंड का आना नहीं पाया जाता। अथवा उत्कृष्ट संख्यात का विरलन कर विवक्षित योग को समखंड कर देने पर प्रत्येक एक के प्रति उसका संख्यात वा भाग प्राप्त होता है, क्योंकि संख्यात को विरलन किया और एक योग स्थान को उसमें दिया तो संख्यात आए, संख्यात वा भाग आया। पुनः नीचे विवक्षित योग संबंधी प्रक्षेप भागार को उत्कृष्ट संख्यात से खंडित कर उनमें से एक खंड का विरलन कर उपरिम विरलन के एक के प्रति प्राप्त द्रव्य को समखंड कर देने पर प्रत्येक एक के प्रति प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। देखो, ऊपर जो विरलन किया था वो तो संख्यात किए थे, उत्कृष्ट संख्या, और उसमें योग को समखंड करके दिया था, और नीचे जो विरलन किया तो प्रक्षेप भागार का विरलन किया, और ऊपर का जो एक एक खंड है वो उसमें विरलन के प्रति दे दिया समखंड करके, तो प्रक्षेप का प्रमाण आया। यानी उसमें एक एक, उसको एक एक प्रक्षेप मिलाने पर आगे आगे वाला योग स्थान आने वाला है। उनमें से एक प्रक्षेप को ग्रहण कर प्रतिराशीभूत विवक्षित योग में मिलाने पर असंख्यात भाग वृद्धि होती है। अलग अलग तरह से प्रक्षेप निकालने की पद्धति बताई है, वहां प्रक्षेप मिलाने पर असंख्यात भाग वृद्धि ही आती है, अथवा 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 करके उन्होंने तीन अलग अलग मेथड्स बताए। इस प्रकार असंख्यात भाग वृद्धि होकर तब तक जाती है जब तक कि एक कम अधस्तन विरल मात्र प्रक्षेप प्रविष्ट न हो, पश्चात अन्य एक प्रक्षेप के प्रविष्ट होने पर संख्यात भाग वृद्धि होती है। पहले भी हमने देखा था ना, असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि होते 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 वो अंतिम प्रक्षेप मिला दिया तो संख्यात भाग वृद्धि हुई, क्योंकि उसके संख्यात खंड किए थे हमने, क्योंकि पूर्व भागार को उत्कृष्ट संख्यात से खंडित करने पर एक खंड से पूर्व भागार की अपेक्षा यह भागार अधिक पाया जाता है। अब अंतिम गुणहानि स्थान के उत्कृष्ट संख्यात मात्र खंड करके उनमें से एक एक खंड के प्रति प्रथम योग स्थान को विवक्षित कर वृद्धि की प्ररूपणा करते समय इसी प्रकार तीन तरह प्ररूपणा करना चाहिए। यह अंतिम दुगुण वृद्धि का पहला स्थान जो है, उसके भी आगे असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, ऐसे ही वहां स्थान पाए जाएंगे। विशेष इतना है कि खंड खंड के प्रति एक खंड के उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण खंड करके उनमें एक खंड से लेकर उत्तर क्रम से जाकर द्वितीय खंड के भीतर संख्यात भाग वृद्धि होती है। ये इतना बीच वाला, ये जो तीन प्रकार से बताए हैं, पहले प्रकार में थोड़ा बहुत ख्याल में आया कि उसके प्रक्षेप कैसे निकालना, उसमें एक एक प्रक्षेप बढ़ाने पर असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि होते हैं, उसी को उत्कृष्ट संख्यात में विरलन कर देंगे समखंड करके तो वो संख्यात भाग वृद्धि के स्थान आ जाएगा, पूरे ही मिला देंगे तो ये डबल हो जाता है, दुगुनी वृद्धि हो जाती है। अब जितना हम समझ सकते हैं उतना समझेंगे, आगे चलकर इसी की प्ररूपणा आएगी तो अधिक समझेंगे। अब ये इतना एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। द्वितीय प्ररूपणा में उत्कृष्ट संख्यात का भागहार एकादि एकोत्तर क्रम से प्रत्येक खंड के प्रति बढ़ाना चाहिए। द्वितीय खंड के रहते हुए दुगुण वृद्धि नहीं उत्पन्न होती, क्योंकि उत्कृष्ट योग से ऊपर दोनों खंडों का अभाव है। तृतीय खंड के रहते हुए भी दुगुण वृद्धि नहीं उत्पन्न होती क्योंकि उससे ऊपर चार खंडों का अभाव है। हाँ हाँ ये संख्यात भाग वृद्धि होती है, दुगुण वृद्धि नहीं होती, इतना ही कहना चाहिए उनको। ये द्वितीय प्ररूपणा पद्धति है अलग कथन की। देखो क्या कहते हैं, फिर द्वितीय प्ररूपणा में उत्कृष्ट संख्यात का भागहार एकादि एकोत्तर क्रम से, एक दो तीन चार एकादि एकोत्तर है, एक एक बढ़ते हुए प्रत्येक खंड के प्रति बढ़ाना चाहिए। प्रत्येक खंड के प्रति एक का भाग दिया, दो का भाग दिया, तीन का भाग दिया, इस तरह से। द्वितीय खंड के रहते हुए दुगुण वृद्धि नहीं उत्पन्न होती, एक एक खंड को लिया ना उन्होंने, क्योंकि ये देखो अभी वो प्रक्षेप मिलाते जाएंगे तो दुगुण वृद्धि होगी, परंतु दुगुण वृद्धि होगी ही नहीं कहीं पे, उसके लिए कुछ कारण बता रहे हैं। क्योंकि उत्कृष्ट योग के ऊपर दोनों खंडों का अभाव है, तृतीय खंड के रहते हुए भी दुगुण वृद्धि नहीं होती क्योंकि उसके ऊपर चार खंडों का अभाव है। इस प्रकार खंड खंड के प्रति उत्तरोत्तर दो दो खंडों के अभाव का हेतु कहना चाहिए। अथवा दूसरी पद्धति से द्विगुणित अधस्तम खंडशला का प्रमाण खंडों के द्वारा इसका कथन करना चाहिए, क्योंकि एक तो अधस्तम खंडशला का प्रमाण खंडों का भागहार के ऊपर आधिक्य पाया जाता है, और दूसरे अधस्तम खंड की शलाकाओं से कम उत्कृष्ट संख्यात मात्र खंडों का ही ऊपर प्रवेश देखा जाता है। दो चार छह जो कुछ अठारह तक उन्होंने बताया है, ये बात मेरे तो कुछ समझ में नहीं आई है। आगे है क्या कहीं योग का प्रकरण और आने वाला है, पता नहीं। आपने तो पढ़ा था ना पहले, ओमिट करके पढ़ा था। नहीं नहीं अभी तक तो ये इतना ही लेके, ये दुगुण वृद्धि क्या है इतनी बात समझ में आई है। ये दुगुण वृद्धि मैंने तो कल तीनों ही बुक निकाल के पढ़े, रात को तो मैं बहुत बार जागी। ये तो ये भी पढ़ा, ये कर्मकांड भी निकाल के पढ़ा, उसमें भी ये दुगुण वृद्धि का उसमें से ख्याल है कि यहाँ कुछ अलग बात चल रही है। पहले तो गुनहानी वगैरह अधस्तन ऊपर की वो अलग बात थी, फिर उसमें सिद्धांत कोश में भी देखा, उसमें तो बहुत थोड़ा ही, कुछ कुछ नहीं है उसमें तो। हाँ तो दुगुण वृद्धि का इतना ही कि योग स्थान में एक अविभाग प्रतिच्छेद योग जो है वो दुगुना दुगुना होता जाता है। जब हम अंतिम दुगुण वृद्धि कही तो अंतिम दुगुण वृद्धि में अंतिम कहा ना, उसके आगे दुगुण वृद्धि होने ही वाली नहीं है, यानी संख्यात गुणा वृद्धि होने ही वाले नहीं है। तो कितनी वृद्धि होगी, कुछ स्थान है उसमें असंख्यात भाग असंख्यात भाग असंख्यात भाग वृद्धि के स्थान है। तो यहाँ अंतिम स्थान में ये जो यहाँ जो सूत्र में आया था वहां क्या होगा, असंख्यात ऊपर नीचे होगा ना थोड़ा, जीव योग स्थान पलटेंगे उसके तो असंख्यात भाग वृद्धि से पलटेंगे या असंख्यात भाग हानि से पलटेंगे अंत की ओर, उसमें और दुगुना भी नहीं होगा। असंख्यात 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 होगा, और संख्यात भाग वृद्धि के लिए भी उसको और चाहिए तो होगा, परंतु इतने उसके प्रक्षेप उसमें नहीं मिलेंगे। तो वहां इतने ही स्थान है कि जहां असंख्यात भाग वृद्धि या लौट कर आता है तो असंख्यात भाग हानि ही होगी, ये बताया था ना। उसमें अंतिम स्थान में तो दो ही होते हैं, उसके पहले पहले में संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग हानि भी संभव है, यानी वहां पर तीन संभव है और अंत में तो दो ही संभव है अंतिम स्थान में। ये बात यहाँ बतानी चाहते हैं, उसको ही उन्होंने अलग अलग पद्धति से बताया है, वो अपने विशेष कुछ ख्याल में नहीं आया है, जितना आया है उतना आया है। अब यही रुकते है अभी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो।